भजन संहिता 92 जैसे मैंने कहा, दाऊद भजनों के माध्यम के द्वारा बहुत कुछ अपने मन की अभिलाषा को, जिज्ञासा को, कृतज्ञता को, बहुत सारे विचारों को व्यक्त करता है। क्योंकि दाऊद ने जिस जीवन में होकर चला, जिस यात्रा में होकर चला, उसने अपने जीवन को यात्री और मुसाफिर करके समझा और उसी के साथ साथ उन अनुभवों में उसने वर्णन करा। और जब हम 2019 के पहले दिन को देखते हैं, याद करते हैं, जब हम 2019 में पहला जनवरी हमने दिन आरंभ किया था, हम नहीं जानते थे कि 2019 किस तरह से हमारे साथ व्यतीत होगा, कौन से अनुभव में मिलेंगे, कौन से संघर्षों में से हमें जाना पड़ेगा, कौन से दुख और बीमारियों में से हमें सामना करना पड़ेगा, कौन सा विरोध हमारे सामने आएगा, कौन सी शत्रुता आएंगी, कौन से संघर्ष आएंगे, कौन से उत्साह की बातें आएंगी, कौन सी निराशा की बातें आएंगी, कौन सी बीमारी आएंगी, हम नहीं जानते थे। लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे पन्ने के एक एक दिन पलटते गए, हम उन पन्नों को देखते गए। अभी भी 2-3 पन्ने 2019 पुस्तक के बाकी हैं जिनको हमें पलटना है। हमें देखना है कि क्या कुछ इन आगे वाले 2 दिनों में परमेश्वर ने हमें रखा है। हम कुछ नहीं जानते लेकिन परमेश्वर जानता है, और जैसे जैसे ये दिन पूरे होते जाएंगे हम देखते चले जाएंगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ रखा है। सच है, हम आगे की ओर भी देखते हैं लेकिन हम पीछे की ओर भी देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या करा, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से परमेश्वर का दाऊद धन्यवाद कर रहा है। और जो आज का विषय है, भाई राजशेखर ने जब प्रार्थना आरंभ की थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी, परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, और वही विषय आज मेरा भी इसका है, परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। चाहे जीवन की कैसी सम और विषम परिस्थिति हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी इच्छा वहाँ तक नहीं पहुँचने पाती, लेकिन परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो हमारे लिए हमेशा उत्तम विचार रखता है। और इसलिए भजनकार 92 में कुछ बातों कह रहा है। हमने इस भजन को 3 खंडों में बांटा है। पहला खंड है पहले से 4 पद तक, जो धर्मी परमेश्वर प्रति धन्यवादित होता है। एक धर्मी परमेश्वर प्रति धन्यवादित होता है, पहले से 4 पद तक। दूसरा 5-9 पद तक, धर्मी परमेश्वर के कार्यों प्रति धन्यवादित होता है, चाहे वो कैसी कार्य हो, चाहे सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, चाहे दुख में हो चाहे पीड़ा में हो, जैसे भी हो परमेश्वर के कार्य प्रति धन्यवादित होता है। तीसरा 10 पद से लेकर 15 पद तक, धर्मी परमेश्वर के प्रेम प्रति धन्यवादित होता है। राइटस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन एवरीथिंग, राइटस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज माइटी वर्क, राइटस गिव थैंक्स फॉर हिज लव, और प्रेम में चाहे कुछ हो। तो ये 3 भागों में मैंने इस भजन को, भजन संहिता 92 को बांटा है, जो हम थोड़ा देर के लिए विचार करना चाहेंगे। पहला, हे यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और ये भी कि हे परम प्रधान तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाएं, कि प्रातः काल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा दस्तार वाले बाजों की सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से की जाए, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने कार्य से मुझे आनंदित किया है, मैं तेरे हाथ के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। अगर इस पूरे भजन को जो 15 पद इसमें है, अगर इसमें देखा जाए तो 8 पद जो है वो इन 15 पद में एक मुख्य पद है जो पूरे इन 15 पदों को घेरे रहता है, और 15 पदों कहता है परंतु हे यहोवा तू सदा सर्वदा परम प्रधान है। हे यहोवा तू सदा सर्वदा परम प्रधान है, स्वर्ग उसका शासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वो हमारा सार्वभौमिक परमेश्वर है, सब कुछ को नियंत्रण रखने वाला है परमेश्वर। उसने सृष्टि की तो सृष्टि से पहले वो सब कुछ जानता था, सृष्टि करने के बाद वो सब कुछ जानता है, और आने वाले दिनों के बारे में वो सब कुछ जानता है। सब कुछ वो जानता है, सब कुछ को वो नियंत्रित करता है, सब कुछ को अधिकार में रखता है, इसलिए वो परमेश्वर सदा सर्वदा परम प्रधान है। और दाऊद ने परमेश्वर के इस महान गुण को समझ लिया था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के जन होने के नाते, मुझे और आपको भी और अधिक इस बात को मानना है, जानना है, मानना है और अपने अंदर लेना है कि परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परम प्रधान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। यद्यपि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, यद्यपि वो हमसे प्रेम करता है, यद्यपि वो हमारी चिंता करता है, यद्यपि वो हमारे साथ अन्याय या अनर्थ नहीं करता है, फिर भी वो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है और जो उसको भाता है वो करता है। और जब वो इन बातों को ध्यान में रखता है कि परमेश्वर यहोवा तू सदा सर्वदा परम प्रधान है, तो वो यहाँ पर पहले पद से लेकर चार पद में वो कह रहा है कि निश्चय परमेश्वर परम प्रधान है, इसलिए मैं उसकी स्तुति के गीत गाऊंगा। क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है इसलिए मैं उसकी स्तुति के गीत गाऊंगा। और सब हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, हर समय परमेश्वर की स्तुति के गीत गाना भला है। और वो दाऊद इसी जीवन में कहता है। हम जानते हैं दाऊद को किस अनुभव में होकर गया। उसके लिए सरल नहीं था उसका जीवन, जरूर एक युवावस्था में परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको चुना था और वो राजमहल में पहुंचा था, अभी पहुंचा भी नहीं था, लेकिन शाऊल को, जिसने उसकी सारी सेना को और यहां तक कि शाऊल को उसने बचाया था, वो शाऊल ही उसका वैरी बन गया था। और किस प्रकार से अब उस द्वेष में ईर्ष्या में होकर शाऊल उसके पीछे पड़ गया, न केवल इतना लेकिन किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद अब उसको राजाओं से, ना तो राजाओं से लेकिन अपने बेटे से, अपने परिवार के लोगों से, उसको किस प्रकार से एक संघर्ष का सामना करना पड़ा। और ऐसी स्थिति भी आई कि उसको अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। ये सब कुछ के अनुभव में होकर फिर भी उस बात को कहता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति गाऊंगा। क्यों? दो पद में कि प्रातःकाल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा दस्तार वाले बाजे, सारंगी और वीणा से ऊंचे स्वर से की जाए। क्यों कह रहा है वो इस बात को कि तेरी करुणा, इंग्लिश में जो शब्द आया है वो प्रेम शब्द आया है, प्रातःकाल तेरे प्रेम का और रात्रि व तेरी विश्वासयुक्तता का, फेथफुलनेस, सच्चाई की जगह फेथफुलनेस, विश्वासयुक्तता का वर्णन आया। कह रहा है तेरी करुणा और तेरी सच्चाई की चर्चा दस तार वाले बाजे, सारंगी वीणा और ऊंचे स्वर से की जाए। क्या कह रहा है वो, क्या कहना चाह रहा है, क्यों वो कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर के कार्य के वर्णन, परमेश्वर के प्रेम के वर्णन, परमेश्वर के विश्वास का वर्णन मैं उन साज बाजों के साथ, उन गीतों के साथ करूंगा। क्यों? वो गीतों की ध्वनि के कारण, वो साज बाजों की ध्वनि के कारण सारी जो आवाजें हैं वो दब जाएंगी और परमेश्वर की गीत के गीत की ध्वनि जो है वो सब कुछ के ऊपर जाएगी। मेरे प्रियो, हम इस ऐसे संसार में जो हमें बहुत सारी आवाजें हमारे कानों में रहती हैं और हमें जो बाधक पहुंचाती हैं, जब हम नए नियम में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, देखते हैं उसकी सेवा के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में एक बात विशेष हम पाते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने काम किया कि उसने लोगों को भीड़ से अलग करके उनसे व्यवहार किया। चेलों से बात करनी थी, कई बार उसने भीड़ से उनको अलग किया। किसी को चंगा करना था, भीड़ से उसने अलग किया। कई बार उसने लोगों को अलग करा। कारण क्या था? इसलिए ताकि दूसरी चीजें, दूसरी बातें उनके लिए किसी प्रकार से भी बाधक का कारण ना बने पाए, बाधा ना बने। और आज हम ऐसे संसार में हैं, आज हम ऐसे संसार में जहां पर हमें बहुत सारी आवाजें हमारे कान में आती हैं, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखने पाते, जिससे हम परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देखने पाते, जिससे हम परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को नहीं देखने पाते, क्योंकि वो ध्वनि जो है वो ज्यादा तेज हो जाती है और हमारे जीवन में परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर के कार्य को दबा देती है। लेकिन दाऊद कहता है वो ध्वनि मैं ऊंचे स्वर से गाऊंगा, गीत गाऊंगा, सारंगी बजाऊंगा, ताकि बाकी ध्वनि खत्म हो जाए, दब जाए और मैं परमेश्वर के उपकारों की चर्चा कर सकूं, उसकी विश्वासयुक्तता की चर्चा कर सकूं, उसके सच्चाइयों की चर्चा कर सकूं, उसके प्रेम की चर्चा कर सकूं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी सच्चाई जो परमेश्वर की है, करुणा है, सबसे बड़ी करुणा परमेश्वर की उसने मेरे आपके ऊपर जो किया है, कि जब हम नाश हो रहे थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हम पाप के कारण हम आशाहीन हो रहे थे और दंड की आज्ञा मुझ पर आप पर लग चुकी थी, ठीक है समय पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए मेरे और आपके लिए। परमेश्वर की सबसे बड़ी करुणा ये थी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए संसार में भेज दिया, ताकि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जुटे, और वो मेरे और आप पर करुणा करके मुझे और आपको पाप के दंड से बचा ले। सबसे बड़ी करुणा उसकी थी जो संसार की कोई चीज नहीं कर सकती थी। धर्म कर्म रीति विधियां कोई भी ये सारे काम को नहीं कर सकते थे जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में किया। इसके लिए मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चौथे पद में कहता है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है। तूने मुझे अपने कार्यों से आनंदित किया, मेरे कार्य नहीं लेकिन परमेश्वर तेरे कार्य जो मेरी सोच और मेरे समझ से परे हैं, मेरे विचारों से परे हैं, मेरी पहुंच से परे हैं। तेरे कार्य तो अद्भुत है, परमेश्वर के कार्य तो सृष्टि से पहचाने जाते हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि उसके कार्य सृष्टि से पहचाने गए हैं। यशाया कहता है उसके कार्य सृष्टि से पहचाने गए। यर्मिया कहता है उसके कार्य सृष्टि से पहचाने गए। ये सारे लोगों ने अलग अलग स्थलों में अलग स्थानों में परमेश्वर के कार्यों का वर्णन किया है, और यहां पर वो कह रहा है कि सच है यहोवा तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से भजन गाऊंगा। सच है एक विश्वासी जन, एक प्रभु के साथ साथ रहने वाला जन, एक प्रभु को जाने वाला जन कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के कार्य को देख सकता है, पहचान सकता है। यद्यपि कई बार हम विचलित होते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर की असीम शांति पाई जाती है। और यशायाह कहता है वो शांति जो है वो नदी के समान है। नदी के समान क्या मतलब है? अगर आप कभी नदी पर नदी में एक पत्थर फेंकेंगे आप, और जब पत्थर फेंकेंगे तो एकदम से आपको बुहारा दिखाई देगा, लेकिन ऊपर तो बुहारा है लेकिन अंदर क्या है, उस नदी में डीप डाउन पूरा समतल और समानता पाई जाती है। वो अंदर नहीं है, जो बुहारा चल रहा है वो केवल ऊपर ही ऊपर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हलचल होती है जरूर, हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश होते हैं, लेकिन परंतु जीवन के अंदर, मन के अंदर, गहरे जीवन में अगर मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, हम ना आकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों को अपने अनंत शांति से समाये रहता है, क्योंकि हम उसके कार्य को स्मरण करते हैं। अगर एक जगह परमेश्वर के हम कुछ ऐसे देख रहे हैं जो हमारे सामने कठिनाई आ रही है, तो दूसरी जगह हम देखते हैं परमेश्वर इस कठिनाई में भी हमारे सहायक बनाए, और हम अपनी पूरी यात्राओं में। और मेरे प्रियो ये अच्छा है जब हम इस साल के अंत में पहुंच रहे हैं। प्रभु ने 2 या 3 दिन दिए हैं मुझे और आपको, अगर प्रभु हमें जीवन देता है तो हम उसके अनुग्रह में होकर नए साल में प्रवेश कर सकेंगे। और अगर हम प्रवेश करते हैं तो क्यों ना उससे पहले बैठ करके हम विचार कर सकें, हम सोच सकें, कुछ समय परमेश्वर के साथ बैठे, प्रभु आप अपने कार्य को मुझे स्मरण दिलाइए। कौन से कार्य थे? मेरे परिवार की क्या स्थिति थी? मेरे व्यक्तिगत जीवन की स्थिति क्या थी? मेरे कार्य की स्थिति क्या थी? मेरे अपने दूसरे संबंधों की स्थिति क्या थी? लेकिन तूने कौन से वो कार्य किए जिसको मैं स्मरण करके तेरा धन्यवाद करता हूँ? एक विद्यार्थी होने के नाते परमेश्वर ने अलग कार्य किए होंगे, एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर ने अलग कार्य किए होंगे, अलग अलग रीति से, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर के कार्य ना हो सके। आगे चल के वो दूसरे भाग में इसी बात को और वर्णन खुलासात वर्णन करता है। तो पहली बात, एक सच में पहला भाग जो है वो परमेश्वर के कार्य को, धर्म जो है परमेश्वर के कार्य को स्मरण करता है। उसके कार्य अद्भुत हैं, उसके कार्य सामर्थ्य के साथ हैं, उसके कार्य पराक्रमों के साथ हैं। ये है उसके कार्य, अद्भुत कार्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ओ किस रीति से उसके कार्य सामर्थ्य के साथ हैं, जो सामर्थ्य हमारे में नहीं पाई जाती। किस प्रकार से उसके कार्य पराक्रम के साथ हैं, वो पराक्रमी जो परमेश्वर अद्भुत है, महान है, वो अपने कार्य करता है। जैसे मैंने कहा सृष्टि के समय से उसका कार्य हमारे जीवन में है, ना केवल उद्धार के कार्य है, ना केवल अपराध के क्षमा करने के कार्य, लेकिन प्रतिदिन प्रतिदिन किस प्रकार से वो मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी सुधि लेता है, किस प्रकार से वो अगुवाई करता है, किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, किस प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे परिवार को संभालने में, कैसे परमेश्वर ने हमारे साथ किए। कई बार हम इन बातों को नहीं विचार करते, लेकिन बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के कार्य को स्मरण कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। हाँ, मैं स्वस्थ था इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया। मैं स्वस्थ था, मैं नौकरी जा सका। मैं स्वस्थ था, मैं कैश पैसा कमा सका। मेरे पास बुद्धि थी, मैं ही कर सका। अरे, मैं बहुत होशियार हूं इसलिए मैंने सीखा। नहीं, ऐसा नहीं है। ना हमारा स्वास्थ्य, ना हमारी बुद्धि, ना हमारी शक्ति, ना हमारी योग्यता, ना हमारा कुछ अपनापन, लेकिन जो कुछ किया परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे स्वास्थ्य मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे नौकरी मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे परिवार मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे सेवा मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला है। और इसलिए हर पल मुझे और आपका परम को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमने जो भजन पढ़ा भजन संहिता 100, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, चाहे वो हमारे भौतिक हों, चाहे आत्मिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे कैसे भी हों, किसी भी उपकार को ना भूलना। और तब वो कहता है तेरे अधर्म को क्षमा करता। सबसे पहला उपकार परमेश्वर ने जो किया है मेरे और आपके जिम्मे, मेरे और आपके जिम्मे अधर्मों को क्षमा करने का उपकार है। मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। शरीर बढ़कर नहीं, जरूर शरीर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन उससे बढ़कर ये हमारी आत्मा। और तब वो कहता है तो वो तेरे अधर्म को क्षमा करता। तब दूसरा कहता है तो तेरे रोगों को चंगा करता है। तब दूसरी बात तेरे रोगों को चंगा करता है। अगर मेरे अधर्म क्षमा ना हो और मैं स्वस्थ रहूं तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य स्वस्थ होने के बाद भी यदि सब कुछ होने बाद नरक में जाए तो उसे क्या लाभ। तो परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष जो है, और इसीलिए वो पूरा वर्णन करता है और पांच चीजें वहां वर्णन करता है भजन संहिता 103 और एक पद से लेकर 5 तक। अधर्म क्षमा करता, तेरी जवानी को युकाब की नाई कर देता है, तेरे मनोरथों को पूरा करता है। किस रीति से? बहले के जाल से छुड़ाता है, महामारी से बचाता है। ये सारे उपकार उसमें महामारी से उसने बचाया है। बहले का जाल मतलब क्या है? जिस तरह से वो पक्षी को पकड़ने के लिए जाल लेकर अचानक से वो आ जाता है, उस तरह से शैतान कितनी बार हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है वो बहले के समान है। शैतान को बाइबल में बहेलिया का चित्रण दिया गया है, उसके समान है जो हमें घेरना चाहता है, हमें डालना चाहता है, अपने जाल में फंसाना चाहता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो उसके उपकार है कि उससे उसने मुझे और आपको बचाया है। कितनी बार मैं और आप उस बहेले के जाल में फंस सकते थे, चाहे अपने स्वभाव के कारण, चाहे अपने अवगुण के कारण, चाहे अपने सोच के कारण, चाहे अपने निर्णयों के कारण, चाहे विचारों के कारण। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके उस उपकार को ना भूलना। और यही वो कह रहा है, इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कितनी अद्भुत बात है। वो कहता है कि उसने मेरे और आपका उपकार किया। दूसरी बात कहता है 5 पद से लेकर के 9 पद तक, कहता है हे यहोवा तेरे कार्य कैसे महान है, तेरे विचार बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसका ज्ञान नहीं रखता, ना मूर्ख और ना मूर्ख इसे समझता है। 3 बातों कहता है, पशु मूर्ख आगे चल के 7 पद में कि दुष्ट जब घास के समान पनपते हैं। परमेश्वर के कार्य को मूर्ख नहीं समझता, परमेश्वर के कार्य को पशु समान मनुष्य नहीं समझता। पशु समान मतलब क्या है? ठीक है, उसके पास जीवन तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पास वो विवेक नहीं है, उसके पास वो कॉन्शियस नहीं है, उसके पास वो सोच नहीं है, वो किसी अच्छे कार्य को नहीं स्मरण करता। एक सांड के पास जाइए, उसको खाना खिलाइए, थोड़ी देर बाद वही सिंह देगा, सिंह से मारेगा। नहीं समझता कि मेरे ऊपर मेरे को भोजन दिया जा रहा है। कितने बार कितने जानवरों को, कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो ये सच है। वो कह रहा है पशु समान परमेश्वर ने मुझे और आपको पशु नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित मनुष्य बनाया है और अपना जीवन दिया है। दूसरी बात कहता है वो नामूर्ख इसे समझता है, नामूर्ख। और भजन संहिता 14:1 में कहा है, वो कहता है मूर्ख के बारे में, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल में भजन में और नीति वचन में कई जगह स्थल है जहां मूर्ख शब्द इस्तेमाल किया है। पहला लिखा है 14:1 में, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। नीति वचन 14:9 में, जो पाप का अंगीकार नहीं करता वो मूर्ख है। जो पाप का अंगीकार नहीं करता, पाप करने के बाद भी बहाना बनाता है और पाप के इधर इधर कुछ करता है वो मूर्ख है। एक पाप होने के बाद, अपराध होने के बाद सीधे रीति दंडता के साथ, सिद्धाई के साथ, हां मेरे से गलती हुई है, मेरे से अपराध हुआ, मैंने पाप किया है, कई बार हम पाप को करने के बाद उसको छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं, अरे ऐसा नहीं करना था लेकिन ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो कहता है जो पाप का अंगीकार नहीं करता वो मूर्ख है। 15:5 में कहता है नीति 15, जो पिता की ताड़ना का तिरस्कार करता है वो मूर्ख है। नीति जन 20:3 में कहता है जो झगड़ा करता है वो मूर्ख है। ये कई तरह से आप देखते जाइए परमेश्वर के वचन में, करीब 7-8 आपको रेफरेंसेस ऐसे पद मिलेंगे जहां परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख कौन है। सबसे पहली वो बात, जो परमेश्वर का इनकार करता है वो मूर्ख है, परमेश्वर है ही नहीं, वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता, तैयार नहीं होता, वो अपने बल पे अपनी शक्ति पर। कितने लोग आ जाए जो ये है। लेकिन मेरे प्रियो वो क्या कह रहा है, मूर्ख यहां पर कहता है, यहां पर कह रहा है मूर्ख मनुष्य परमेश्वर के उपकारों को नहीं समझता, नहीं पहचानता, और जब नहीं समझता नहीं पहचानता तो उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं होता, इसके प्रति वो धन्यवादित भी नहीं होता। और मेरे प्रियो जब हम धन्यवादित होते हैं तो धन्यवादित कई तरह से हमारे धन्यवाद व्यक्त होते हैं। धन्यवाद हम अपने शब्दों के द्वारा करते हैं, धन्यवाद हम अपने क्रियाओं के द्वारा प्रकट करते हैं, अपने एक्शन के द्वारा प्रकट करते हैं, अपने कार्य के द्वारा प्रभु को अपने उपहार धन्यवाद की भेंटों को अर्पण करने द्वारा, चाहे वो शब्द में हो, चाहे वो धन में हो, चाहे किसी और रीति से हो, ये है वो कहता है। और तब आगे चल के कहता है दुष्ट क्या कहते हैं, जब वो घास के समान पनपते और जब अधर्मी फूलते पलते हैं तो ये केवल इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश किए जाएं। मेरे प्रिय परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखता है। यहां पर मैंने इसीलिए कहा दूसरा भाग जो है परमेश्वर धर्मी जो है परमेश्वर कार्य के प्रति धन्यवादित होता है और परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखता है। अब बाइबल नए नियम में भी हम कहते हैं, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा घास और दाना दोनों बढ़ेंगे, तो बीज बोयाता है तो बीज बढ़ेगा लेकिन उसके साथ साथ घास बढ़ेगी। और घास तो गेहूं के साथ घास तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, आप खुद खेत में देखते हैं कितनी जल्दी घास को बढ़ता है, धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं और आप क्यों धान की निराई करनी पड़ती है, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें घास बढ़ जाती है, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन उसका अंत क्या होता है, उसको इकट्ठा करके बाद में आग में डाला जाता है। कई बार संसार के लोगों को हम इसी रीति से फलते फूलते देखते हैं, धन उनके पास है, वैभव उनके साथ है, बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 2 मिनट में चले गए। अभी कल मैं यूट्यूब में एक आजकल शायद आपने सुना होगा, पिछले दिनों में फराह खान ने और भारती ने कुछ मसीहों के लिए कुछ एक शब्द का लेके ठट्टा उड़ाया, और तब उसके बाद किसी ने यूट्यूब में बहुत सारे उसमें किसी ने कुछ ऐसे लोगों के जीवन के बारे में वर्णन किया है कि जिन्होंने मसीहों प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और कितनी जल्दी वो नाश हो गए। करीब 5-6 ऐसे उद्धीर गए उनके, और मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था और मैं देख रहा था किस प्रकार से हमारा परमेश्वर कैसा गंभीर परमेश्वर है, परमेश्वर कैसा है। और इसलिए परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था, परमेश्वर ठट्टों में नहीं था, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। मेरे प्रिय अगर ये व्यक्ति कोई भी है, अगर मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसका धन के बल पर पे, उसकी अकल के बल पे, उसकी सामर्थ्य के बल पर, उसकी किसी और चीज के बल पर वो बहुत कुछ संपन्नता को प्राप्त कर लेगा, सब कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन हम नहीं जानते कब समाप्त हो जाए। और इसीलिए हमें अगर सचमुच में परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करते हुए एक विश्वासी सच्चे विश्वासी की पहचान क्या है, एक सच्चे विश्वासी पहचान क्या है, वो अपने सोच में, अपने कार्य में, अपने निर्णय में घूम के बाइबल पर आता है, परमेश्वर के वचन पाता है। क्या ये वचन में है जो मैं कर रहा हूं, क्या वचन के अनुसार है, क्या मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं ये वचन के अनुसार है, किसी में बोलूं तो क्या वचन के अनुसार है, घूम के वो बाइबल के पर आता है। और जितना अधिक हम बाइबल के अंदर आएंगे, बाइबल में आएंगे, उतना अधिक प्रभु हमें संभालेगा, उतना अधिक हमारी धार्मिकता बढ़ेगी, उतना अधिक हम परमेश्वर के भय में बढ़ेंगे। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारने के लिए। अगर ये वचन हमारे जीवन का आधार बन जाए तो हम बहुत सारे आध्यात्मिकता के कार्यों से और आध्यात्मिक के मार से बच जाएं। और इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि सच में वो पशु जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, परमेश्वर ने मुझे और आपको पशु नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको मुझे और आपको विवेक दिया। वो विवेक जो एक दिन सो रहा था उसने मुझे और विवेक को जागृत दिया, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी समझ दी है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बुद्धि और अपना ज्ञान दिया, और इसलिए हमें परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना है, और परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए करते हमें अपने जीवन को बताना है। पास्ट में, बीते समय में, परमेश्वर दोनों अनुभवों में हमें उनके ले आता है, चाहे वो खट्टे हो चाहे वो मीठे हो, और उन अनुभवों में परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मुझे ऐसे अनुभवों में से ले गया। शायद दो बार मेरे का हड्डी टूटी और मैं आज हड्डी के दर्द को समझ सकता हूं, हड्डी के पेन को समझता हूं। मैं जला, मुझे मालूम है जलने का दर्द क्या होता है। इन अनुभवों में प्रभु लेके गया, जो एक व्यवहारिक बातों में हम देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद, उन अनुभवों को हम समझ सकते हैं। लेकिन उन अनुभवों में मैंने क्या सीखा है, मुख्य बात यह है। उन अनुभवों में मेरा जीवन किस प्रकार से सुधरा है, ये मुख्य बात है। उन अनुभवों में किस प्रकार से मैं नर्म होकर परमेश्वर की निकटता में आया हूं, ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात है। और मेरे और आपके पास जब भी परमेश्वर कोई ऐसे अनुभव लाता है तो मुझे और आपको उन अनुभवों में परमेश्वर की निकटता में आए। इसलिए दाऊद कहता है, भला हुआ कष्ट मेरे ऊपर आया जिससे मैंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना सीखा है। और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन मुझे अपनी निकटता में लाना, मुझे परमेश्वर का वचन जो है मुझे उसकी निकटता में जाना है, ये बहुत जरूरी है। जितना अधिक हम इस बात को देखते हैं, अरे ऐसा था इसलिए हो गया, अरे ऐसा था इसलिए हो गया, अरे उसने तो ऐसा कहता है, नहीं होता है, कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है सामने, लेकिन उन परिस्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना पड़ता है। एक विश्वासी सीखने के लिए तैयार रहता है, एक विश्वास सुनने के लिए तैयार होता है, एक विश्वासी समझने के लिए तैयार होता है। उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, और फिर वो पालन करने तैयार होता है। जब ये जीवन में हमारे आता है तो हम सच में परमेश्वर सामने मूर्ख नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर सामने बुद्धिमान बनते हैं। मूर्ख का व्यवहार, मूर्ख का एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है। परमेश्वर मुझे और आपको मूर्ख जीवन में रहने के लिए नहीं बनाया, और इसलिए समझना है। तब आगे कल के तीसरे भाग में हम जल्दी जाते हैं। तब तीसरे भाग में, जैसे मैंने आठवें पद में कहा, आठवां पद मुख्य पद है, परंतु ये यहोवा तू सदा सदा पर प्रधान है, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु वहां तेरे शत्रु नाश होंगे और अधर्मी तितर बितर किए जाएंगे। जो घास की तरह बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, वो बहुत है, इनके पास ये भी है, इनके पास ये भी, ऐसा है वैसा है, और बहुत है, लेकिन वो धार्मिकता का जीवन नहीं व्यतीत करें, कल विनाश। हमारे संसार में बहुत चारों तरफ दिखाई देते हैं। कई बार मुझे और आपको साधारण नाम विश्वासी में भी ऐसा होता है। संपदा का सुसमाचार प्रचार करने वाले कैसे लोग हैं, इसी तरह के फलते फूलते दिखाई देते हैं, बहुत कुछ संपन्नता में घमंड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जीवन उनका नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको साधारण नाम। तब तीसरे भाग में जाते हैं, 10 से 15 तक, जल्दी से तीसरे भाग में वो कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम के प्रति धन्यवादित होना है। क्यों परमेश्वर प्रेम प्रति धन्यवाद? करीब 5 आशीष है जो यहां पर, उस जो एक धर्मी जन है, उस धर्मी जन में 5 इन आशयों को वो बढ़ता, हमने कई बार इन पदों को पढ़ा होगा और कई बार सुना है, प्रचार भी क्या होगा, वो क्या कह रहा है, परंतु, अभी क्या कह रहा है, इससे पहले मूर्ख दुष्ट पशु के समान लोगों की बात कर रहा है, लेकिन परंतु जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो धर्मी जन है, वो क्या करते हैं उनके लिए, परंतु तू मेरे सींग को जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा करेगा। परंतु जो धर्मी है, परमेश्वर उसके सींग को ऊंचा करता है। समय लगता है, कई बार हम विचलित होते हैं, हमारा स्वभाव यह है, हम तुरंत किसी चीज का उत्तर चाहते हैं, पर धीरज धरना बहुत कठिन होता है, और परमेश्वर बार बार धीरज धरने की शिक्षा देता है, वेट एंड सी, प्रतीक्षा करो, ध्यान रखो, और मुश्किल होता है, और ऐसे समय में मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। कह रहा, पहली चीज वो सींग को ऊंचा करता है, दूसरा बात वो कहता है, और उसने ऊंचा किया, मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। अभिषेक, अभिषेक करने का मतलब क्या है, आशीषित करना, ऊंचा उठाना विशेष प्रकार से। जब परमेश्वर किसी राजा को नियुक्त करता था, जब परमेश्वर किसी याजक को नियुक्त करता था, जब किसी परमेश्वर किसी भविष्य तक को नियुक्त करता था, तो परमेश्वर उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। यह मतलब होता था, यह परमेश्वर की दृष्टि में यह मूल्यवान है, परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ है, परमेश्वर ने इसको आशीषित किया है, परमेश्वर ने इसको सम्मानित किया है। तेल से अभिषेक करना सम्मानित करना होता है। और पर दूसरी आशीष है, एक धर्मी जन के लिए, एक धर्मी जन के लिए जरूर वो परमेश्वर उसको अपने समय में तेल से अभिषेक करता है, सम्मानित करता है। तीसरी बात वो कहता है दुष्टों पर विजय प्रदान करता है, कहता है मेरी आंखों ने मेरे शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा, मेरे कान उन कुकर्मियों का हाल सुनते हैं जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। दुष्टों का कह रहा है वो धर्मियों को दुष्टों पर विजय प्रदान कर देते हैं। कई बार आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में शायद वो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते और उनके कारण आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, आप परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अजीब रीति से कार्य करता है। माफ कीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अपने परिवार का। आंटी का स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी, और वहाँ पर उनके प्रिंसिपल उनको बहुत परेशान करते थे और इतना संघर्ष था हम लोगों के सामने क्योंकि नौकरी करनी थी उस समय और कोई साधन नहीं था और हम लोग प्रार्थना करते थे, वो भी प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने अजीब रीति से काम किया। एक दिन उनको स्वप्न दिया कि वो उनके साथ घुटने टेक के प्रार्थना करेगी। अरे वो रोमन कैथलिक सिस्टर कैसे प्रार्थना करेगी, वो तो कभी प्रार्थना। और अजीब से वहाँ कुछ एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिस परिस्थिति में उनको किसी रीति से मदद की जरूरत है। भाई राजकुमार यहाँ पर है, वो उस समय उन्हीं के द्वारा वो सब कुछ हुआ था और तब बाद में सारी परिस्थिति बदल दी। ये जो उनके विरोध में थी खिसियाती थी, तुम केवल अगर तुम्हें चर्च का काम करना छोड़ दो, नौकरी करना छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो तो क्या करा जाए। लेकिन प्रार्थना के समय समय के साथ परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया। प्रभु हमारा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, लेकिन मेरे प्रिय हमें धीरज धरना पड़ता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, शायद आज आप ऐसे ऑफिस में हैं, शायद ऐसे अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं जहाँ आपको परेशानी होती है, आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भय में होकर के सच्चाई के साथ अपने कार्य को करते जाइए, अपने प्रेम को, अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को प्रेम से बना के रखिए। एक समय आएगा या तो परमेश्वर आपको उस स्थान से हटा देगा या परमेश्वर उन अधिकारियों को आपके व्यवहार को बदल देगा, जरूर करेगा परमेश्वर, जरूर करेगा। लेकिन आपको प्रतिरोध नहीं करना, आपको प्रतिरोध नहीं करना, आपको समझना है, परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के अधीनता में रहना है और ऐसे करना है। ये सब कुछ को करते हुए तब आपको बढ़ना है। वो कह रहा चौथी बात ही हम क्या करेंगे, वो भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फूलेंगे, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, लहराते रहेंगे, खजूर के समान, लबनोन के देवदार के समान। लबनोन की देवदार की लकड़ी बहुत कीमती और अच्छी होती है और उस समय इन वहाँ पर ये मुख्य वृक्ष पाए जाते थे जो दोनों चीज फल वृक्ष था और अक्सर उनका बाइबल में उनका जो उदाहरण दिया जाता है वो परमेश्वर की विशेष आशीष के लिए दिया गया है, भरपूरी के लिए दिया गया है, उस तरह की संपदा नहीं, लेकिन परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, उसकी तरह दिया दिया गया है। अर्थात परमेश्वर उनके समान को बढ़ेगा, उनको आशीष का कारण बनाएगा और न केवल वो, तब वो कहता है वे पुराने होने पर भी भरते रहेंगे। 15 पद विशेष पद है कि ये प्रकट करे कि यहोवा सच्चा है। क्या प्रकट करे, यहोवा, यहोवा सच्चा है, यहोवा सच्चा है। मेरे प्रियो ये मेरे और आपके जीवन की गांठ बन जानी चाहिए, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस परमेश्वर को हमने जीवन में लिया है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर वो सच्चा है और उस वो चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, वो सच्चा है, वो चट्टान है, उसमें कुटिलता नहीं, ऐसा परमेश्वर। इस परमेश्वर ने 2019 में जनवरी से लेकर पहली जनवरी से आज तक मेरी और आपकी सहायता की है। उस परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला है, उस परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष किया है, उस परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में भलाइयों को उत्पन्न किया है, धार्मिकता के जीवन को बना के रखने में सहायक है। तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, क्यों ना उसके हम प्रशंसा करें, क्यों ना कहें प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, आपने मुझे संभाला है। मेरे प्रियो जब 31 की नाइट में हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे कि हम उसके उपकारों का वर्णन करके उसके प्रति धन्यवादित हो सके, बहुत लंबा जरूर वर्णन तो बहुत करते हैं, अच्छा हो घर में जा करके आप कुछ समय व्यतीत करें अपने परिवार साथ, अपने बच्चों के साथ, भाई बहनों साथ, सबके साथ बैठे छोटे छोटे बच्चों को स्मरण दिलाएं कि बेटा किस प्रकार से परमेश्वर सहायता की, हम ऐसी परिस्थिति में थे प्रभु ने हमें मदद करी, हम ऐसी परिस्थिति में नम्रता से दीनता से अपने बच्चों को सच्चाई की बात को वर्णन करना ये अच्छा है। घमंड की बात मत करिए, अब जो है उसको प्रकट करिए। कई बार ये मसीह जीवन में बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम घमंड के बात साथ साथ अपने बच्चों को भी घमंड की बात सिखाते हैं, वो अच्छा है, और उसके कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, अगर आप असफल में असफल रहे, बेटा हमारे पास तो ये नहीं था, लेकिन प्रभु ने ऐसे बनाया है, इस तरह से बनाया है, ऐसे परमेश्वर ने हमारे मदद की, उनको वास्तविकता तो मालूम होनी चाहिए। और जब वो वास्तविकता को जाने कि परमेश्वर ने कहाँ से उठाया, हम एकदम ऊपर से नहीं आ गए, हमें मालूम हम किस रीति से हम उठे हैं। आज जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, लेकिन कैसे हम उन दिनों को नहीं भूलते। मैं उन दिनों को नहीं भूलता जब मैं टायर पे टायर चढ़ा करके साइकिल चला करके अपनी ट्रेनिंग करता था, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलता। मुझे मालूम है किस स्थिति से मेरा जीवन आराम हुआ, कहाँ से परमेश्वर ने मेरे पास, मुझे वो दिन नहीं मैं भूलता जब मैं एक बेंच पर रहकर सो के अपने रात को व्यतीत करता था, मैं उस दिन को नहीं भूलता। कहाँ से परमेश्वर उठाया, जब मैं देहरादून से लखनऊ आया था एक छोटे से टीन के बक्से के साथ आया था, मुझे नहीं मालूम था, मैं अपने दिन को कभी नहीं भूलता, कहाँ से परमेश्वर लेके गया। मैंने अपने बच्चों को हर एक को बार बार इन सारी बातों को उसको शेयर किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर के कार्य को नहीं भूलना है, और सच्चाई के साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने सब कुछ को वर्णन करना है, उसको स्मरण करना है, और तब परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और वो हमारे परिवार में धार्मिकता का कारण बनता है। और यदि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर की विश्वासता को देख करके हमारे जीवन में धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती, हमारे बाल बच्चों में धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती, मेरे लिए मैं कहना चाहूँगा वो बहुत दुख की बात है। उसका परिणाम आगे चल के खतरनाक हो सकता है। अगर आप घमंड की बात करेंगे, बच्चों के अंदर घमंड उत्पन्न होगा, और घमंड के साथ वो भी जीवन व्यतीत करेंगे, और जब बच्चे घमंड के साथ जीवन व्यतीत करेंगे आपके लिए हानि होगी। और इसलिए गंभीरता के साथ, सच्चाई के साथ उन चीज़ों को पूरा कीजिए जिन अनुभवों में से प्रभु आपको लेके गया। दाऊद उन चीज़ों का वर्णन करता है, परमेश्वर का वचन वर्णन करता है, धर्मी धार्मिकता के साथ अपने जीवन को ले चलता है, ये सच है। तो परमेश्वर का धन्यवाद उन उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवन के, होस्ता कठिन परिस्थिति रही है, होस्ता बीमारी आई होस्ता असफलताएं हुई, होस्ता विरोध आया होस्ता हमने पाप किया हो, हमसे गलती हुई है, हमसे त्रुटि हुई है, होस्ता ही हुआ, लेकिन कभी उनको ना भूलिए। पर सबसे बढ़कर के परमेश्वर ने अपनी विश्वासयोग्यता को प्रकट किया, और परमेश्वर मुझे और आपको इस दिन तक लेकर आया है, और वही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें आगे लेकर भी चलेगा। वही परमेश्वर वो हमारा एबनेजर है। एबनेजर आपको याद होगा वो पत्थर जब शमूएल के समय में लगाया था, इस परमेश्वर ने हमारी यहाँ तक सहायता की है, वो हमारा एबनेजर बना है हमारे जीवन में, हमारी सेवा में, हमारे परिवार में, वो हमारा एबनेजर बना है। हम जानते हैं उन समय को जिन समय में हमने जीवन व्यतीत किया, पर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का राजा, और जिस परमेश्वर ने यहाँ तक हमें संभाला वो परमेश्वर में आ ले। और मेरे प्रियो, ये सच में धार्मिकता के साथ उसके उपकारों को स्मरण करना, ये भला है और ये अच्छा है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें, और सच में इन दो दिनों में मैं और आप और अधिक विचार कर सके किस प्रकार से हम परमेश्वर साथ उनके उपकारों को स्मरण करके उसकी सच्चाई के साथ, उसकी धार्मिकता साथ उसकी जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो चट्टान है, और वो उसमें कोई भी कुटलती नहीं।